आज है 18 मई दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका ने कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई। बताएंगे आपको क्या है इस समझौते का मतलब।
These continued tariffs on steel and aluminum and our countermeasures have represented significant barriers.
ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार के चुनाव के लिए मतदान आज। भारत से कितना अलग है ऑस्ट्रेलिया का आम चुनाव।
ऑस्ट्रेलिया में मतदान करना अनिवार्य है, मतदान न करने पर फाइन लगता है। सबसे ज्यादा इस बार क्लाइमेट के ऊपर वोट मांगा जा रहा है।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस के सवालों से क्यों बनाई दूरी।
मौन धारण करके बस अपना चेहरा दिखाया। वो तो चेहरा तो रोज हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन पे। सिर्फ अमित शाह ही बोले और उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही हम कह सकते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अमेरिका ने कनाडा से आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली है। अमेरिका के इस कदम के बाद नए उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिल सकती है। अमेरिका और कनाडा ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि स्टील पर लगी 25% और एल्युमिनियम पर लगी 10% इंपोर्ट ड्यूटी 48 घंटे में खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका और मेक्सिको के बीच भी ऐसा ही समझौता हो सकता है। अमेरिका ने पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विभिन्न देशों से स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट करने पर भारी शुल्क लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता के प्रमुख मार्क लोकोक ने चेतावनी दी है कि युद्ध प्रभावित सीरिया के इदलिब प्रांत में स्वास्थ्य सेवाओं को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में इदलिब में सरकारी और विपक्षी सेनाओं के बीच टकराव बढ़ा है। सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले महीने के अंत से अब तक वहां 20 बार स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला हुआ है। ब्रिटेन इसके लिए रूस और सीरिया की सेनाओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि रूस के राजदूत वैसिली नेवेंजिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा,
Мы категорически отвергаем обвинения в нарушении международного гуманитарного права.
हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून तोड़ने के आरोपों का पुरजोर खंडन करते हैं। न तो सीरियाई सेना और न ही रूस की वायुसेना नागरिक ठिकानों पर हमले कर रही है। हमारा लक्ष्य आतंकवादी हैं, न कि आम नागरिक। ये थे रूस के राजदूत वैसिली नेवेंजिया के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों में भारी सियासी उठापटक हुई है और साल 2007 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य वोटिंग का प्रावधान है और करीब 1,64,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट को लेकर तनातनी जारी है। डेविड कैमरून सरकार में अटॉर्नी जनरल रहे कंजर्वेटिव सांसद डोमिनिक ग्रीव ने कहा है कि टेरिजा मे के कमजोर नेतृत्व के कारण लेबर पार्टी के साथ ब्रेक्सिट पर बातचीत नहीं हो पा रही है। ग्रीव ने कहा,
The government has no majority and on top of that, even within the party, there are serious differences.
सरकार के पास बहुमत नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर ही ब्रेक्सिट की प्रक्रिया को लेकर मतभेद हैं। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन का ये कहना सही है कि कमजोर सरकार के कारण बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। ये थे कंजर्वेटिव सांसद डोमिनिक ग्रीव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी राज्य मिसूरी के गवर्नर माइक पार्सन्स ने कहा है कि गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को कानूनी शक्ल देने के लिए इस पर हस्ताक्षर करेंगे। मिसूरी की सीनेट और प्रतिनिधि सभा 8 हफ्ते के बाद गर्भ गिराने को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित करने का विधेयक पारित कर चुकी है। इसके साथ ही मिसूरी अमेरिका के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर गर्भपात पर लगभग पूरी तरह रोक लगाने जा रहा है। ब्राजील के पर्यावरण मंत्री रिकार्डो सालिस ने कहा है कि वो नॉर्वे और जर्मनी के द्वारा चलाए जा रहे अमेजोन परियोजना के फंड की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य जंगलों का कटान रोकना था। बीबीसी समाचार।
ये बी बी सी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। अमेरिका और कनाडा स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क हटाने के लिए रजामंद हो गए हैं। एक साल पहले लगाए गए आयात शुल्क की वजह से दोनों देशों के बीच एक नए व्यापारिक समझौते के लिए देरी हो रही थी। माना जा रहा है कि कनाडा के बाद अमेरिका मैक्सिको पर लगाए गए आयात शुल्क को भी हटा सकता है। क्या हैं इस समझौते के मायने और अन्य देशों पर इसका क्या असर हो सकता है, बता रहे हैं दिनेश उप्रेती।
अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने फैसले से चौंकाया है। उन्होंने कनाडा से आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली है। अमेरिका के इस कदम के बाद नए उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते को जल्द मंजूरी मिल सकती है। अमेरिका और कनाडा ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि स्टील पर लगी 25% और एल्यूमिनियम पर लगी 10% इंपोर्ट ड्यूटी 48 घंटे में खत्म हो जाएगी।
Pleased to announce that we've just reached an agreement with Canada and Mexico and we'll be selling our product into those countries.
राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि उन्हें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कनाडा और मेक्सिको के साथ समझौता हो गया है और अब ये देश बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अपना सामान एक दूसरे को बेच सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के साथ अपने अच्छे रिश्तों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा को कृषि उत्पादों पर लगाई गई 285% तक की इंपोर्ट ड्यूटी हटा लेनी चाहिए। माना जा रहा है कि आयात शुल्क हटाने का मुख्य मकसद अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच व्यापार समझौते यानी USMCA को मंजूरी दिलाने का रास्ता साफ करना है। इस समझौते पर साल 2018 में दस्तखत हुए थे। इस समझौते ने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते की जगह ली थी। अगर अमेरिका और मेक्सिको भी स्टील और एल्यूमिनियम पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी हटाने पर राजी हो जाते हैं तो दोनों ही देश अपनी सरकारों को USMCA को मंजूरी देने के लिए कह सकते हैं। कनाडा ने भी माना है कि ये शुल्क दोनों देशों के मजदूरों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा रहे थे और अब जबकि वो नए नाफ्टा समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों के बीच स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क जारी रखने का कोई तुक नहीं है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा,
Obviously, these continued tariffs on steel and aluminum and our countermeasures represented significant barriers too.
स्टील और एल्यूमिनियम पर दोनों तरफ से लगा शुल्क नए नाफ्टा समझौते पर आगे बढ़ने में बाधा बन रहा था। अब जबकि हमने ये शुल्क पूरी तरह से हटा लिए हैं, अब हम अमेरिका के साथ समझौते को लागू करने की समय सीमा तय करने पर काम करेंगे। ये थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के शब्द। हालांकि अमेरिका को यूरोपीय देशों से एक्सपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी जारी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने यूरोप के लिए भी अच्छी खबर सुनाई और कार के पुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताने की दलील पर यूरोप और जापान पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले ट्रंप क्या अब इन देशों के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। विश्व मानचित्र पर भारत के अलावा एक और देश जहां इन दिनों चुनाव का माहौल है। नई सरकार के चुनाव के लिए ऑस्ट्रेलिया में आज मतदान हो रहा है। भारत से कितना अलग है ऑस्ट्रेलिया का चुनाव और क्या है वहां के चुनावी मुद्दे, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने सिडनी में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नीना भंडारी से बात की।
ऑस्ट्रेलिया में मतदान करना अनिवार्य है और मतदान न करने पर फाइन लगता है, इसलिए जितने भी 16.5 मिलियन वोटर्स एनरोल्ड हैं चुनाव के लिए उन सबको वोट देना अनिवार्य है। एक और चीज जो अलग है भारत के मुकाबले वो ये है कि यहाँ पर वोटिंग डे एक ही होता है जो कि 18 मई को है, लेकिन आप उस दिन के पहले अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या बीमार हैं या किसी कारण से आप वोटिंग बूथ पर नहीं पहुंच सकते हैं उस दिन, तो आप उसके पहले भी वोट कर सकते हैं। इस चुनाव में अभी तक 4.5 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी वोट दे दिया है और ये जो चुनाव हो रहे हैं ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 151 सीट के लिए और सेनेट की करीब आधी सीट, 76 में से करीब 40 सीट के लिए सेनेट के चुनाव हो रहे हैं।
भारत में जिस तरह से अलग अलग पार्टियां होती हैं और कई देशों में हम देखते हैं सिर्फ टू पार्टी सिस्टम होता है, ऑस्ट्रेलिया के चुनावों में क्या तरीका होता है?
यहाँ पे मुख्य तौर पे दो ही पार्टीज हैं, लेकिन कई सारी छोटी पार्टीज भी हैं। लिबरल और नेशनल पार्टीज के गठबंधन से कोएलिशन गवर्नमेंट अभी सरकार में थी जो पिछले 6 साल से है, और अब कह रहे हैं कि लेबर पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी है।
और कौन से मुद्दे हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया के चुनावों में जो सबसे ज्यादा उठाए गए, जिन पर चर्चा हुई, जिनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं?
सबसे ज्यादा इस बार क्लाइमेट के ऊपर वोट मांगा जा रहा है, और इसके अंदर कोल, अडानी की कोल कारमाइकल कोल माइन पे काफी प्रोटेस्ट रैलीज हुई है। कुछ इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट भी एक साथ होकर, उनका भी ये मुद्दा है कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो लोग एक साथ अडानी की कारमाइकल माइन को अपोज करेंगे।
ये थी सिडनी से वरिष्ठ पत्रकार नीना भंडारी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ कल दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन किया। संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह संवाददाता सम्मेलन में आना और सवालों से दूरी बनाना, इसके क्या मायने हैं? समझने के लिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता से बात की।
एक्चुअली ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर तो एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ही सब जवाब देंगे, तो वो क्यों आए का कोई मतलब ही नहीं रहा जब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। एक चीज तो बार बार ये कहा जाता था 5 साल में कि प्रधानमंत्री 5 साल में हर जगह पे इतने सारे तकरीर करते हैं, स्पीच करते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, मगर कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है। जबकि पहले ये एक परंपरा रहती थी कि जो भी प्रधानमंत्री हैं हर साल ना करें तो एटलीस्ट 3-4 बार तो कर ही लेते थे। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको इतना मौन मोहन कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था, मुझे याद है वो विज्ञान भवन में 3-4 बार एटलीस्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। उसके ऊपर जब वो विदेश जाते थे और जब पत्रकार उनके साथ जाते थे, 2 बार बात होती थी, एक बार जाते वक्त, एक बार वापस आते वक्त। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने ये परंपरा को खत्म कर दिया। यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो फिर उनको बोलना चाहिए था। इसका क्या मतलब कि वो आज मौन धारण करके बैठे रहे।
राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे थे कि मीडिया के सामने नहीं आते, मीडिया से घबराते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी की वो चुनौती थी उसको एक तरह से दिखाने के लिए मोदी आज वहाँ पर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गए कम से कम वहाँ पे?
नहीं, बैठ कर फायदा क्या हुआ? वो मौन धारण करके मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बस अपना चेहरा दिखाया, वो तो चेहरा तो रोज हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन पे। और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, 2013 या 12 में जब असेंबली का चुनाव हुआ था गुजरात में, तब मैं गई थी अहमदाबाद। तो जिस दिन मैनिफेस्टो का रिलीज हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली और काफी सारे जो गुजरात के टॉप लीडर्स थे वो आए थे वो मैनिफेस्टो रिलीज के लिए। उस दिन मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने किसी और को एक शब्द भी बोलने नहीं दिया, उन्होंने ही पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ही मैनिफेस्टो का निचोड़ बताया, उन्होंने ही जो सवाल जवाब था उनका जवाब दिया उस दिन। जिनका ऐसा टेंडेंसी है कि और लोगों को नहीं बोलने दे तो वो आकर सिर्फ अमित शाह ही बोले और उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे लगता है एक तरह से इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही हम कह सकते हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन का विश्लेषण कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता। और आइए अब एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों पर। दिनेश उप्रेती तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की तस्वीर के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर पहले पन्ने पर छापी है। शीर्षक है कैंपेनिंग एंड्स वेट बिगिंस। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी और शाह की तस्वीर को पहले पन्ने पर छापा है। मोदी ने दावा किया कि पूरे 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी, ऐसा शायद लंबे समय बाद होगा। हिंदुस्तान का शीर्षक है आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दांव। साध्वी प्रज्ञा के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है। मोदी ने कहा, साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे को लेकर जो बातें कही हैं वो बातें पूरी तरह से आलोचना के लायक हैं। सभ्य समाज में इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। द हिंदू ने राहुल गांधी के उस बयान को पहले पन्ने पर छापा है जिसमें उन्होंने कहा कि बसपा, सपा और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। शारदा चिटफंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की खबर को हिंदुस्तान समेत कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। इससे राजीव कुमार की गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। झारखंड में खूंटी की अदालत ने 5 एनजीओ कार्यकर्ताओं के साथ गैंगरेप में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। ये खबर भी कई अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है।
दिनेश उप्रेती बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। और अब अगली खबर दक्षिण भारत से, जहां एक निजी विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए छात्राओं को छात्रों के मुकाबले अधिक अंक अर्जित करने की शर्त रखी गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आम तौर पर कॉलेजों में एडमिशन के लिए जारी होने वाली कट ऑफ विषय के अनुसार या फिर आरक्षण के मुताबिक तय की जाती है, लेकिन बेंगलुरु के एक विश्वविद्यालय में लड़का और लड़की के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी की गई है। बेंगलुरु की एक मशहूर और निजी विश्वविद्यालय में उन्हीं लड़कियों को दाखिला मिल सकता है जो लड़कों के कट ऑफ प्रतिशत से 1 या उससे भी ज्यादा अंक लाए हो। लिंग के आधार पर कट ऑफ जारी करने की वजह से मामला सुर्खियों में आ गया है। हालांकि क्राइस्ट विश्वविद्यालय के उपकुलपति फादर एब्राहम वीएम इस निर्णय के पक्ष में बात करते हैं। हमारा कॉलेज 50 साल पहले जब शुरू हुआ था तब ये सिर्फ लड़कों के लिए था। करीब 40 साल पहले बोर्ड ने लड़कियों को पढ़ाने की भी इजाजत दी, लेकिन एक शर्त पर कि लड़कियों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे पास 70,000 एप्लीकेशन आते हैं तो कट ऑफ लगाना जरूरी हो जाता है। हम कट ऑफ लगाकर लिंग भेदभाव नहीं कर रहे हैं बल्कि संतुलन कर रहे हैं। ये थे फादर इब्राहिम के शब्द। लेकिन विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र दीपिका अरविंद का मानना है कि यह सरासर भेदभाव है। वो कहती हैं कि जब वो कॉलेज में 12 साल पहले पढ़ रही थी तब भी लड़कियों को जींस पहना नहीं दिया गया था। दीपिका अरविंद ने कहा, इस नियम से ऐसा लगता है कि लड़कियों को अच्छे अंक लाने से उनको पनिश किया जा रहा है। अगर लड़के अच्छे अंक लेते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। ये सरासर लड़कों की तरफदारी है। ये थे दीपिका अरविंद के शब्द। वहीं बेंगलुरु विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर MS तिम्मप्पा इस सारे मामले को अलग नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कहा, बेंगलुरु के और कुछ निजी कॉलेजों में इस तरह का कट ऑफ दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के नियम 2-3 साल के लिए होना चाहिए ताकि लड़के प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएं। ये थे डॉक्टर MS तिम्मप्पा के शब्द। दूसरे शिक्षाविदों का मानना है कि इस तरह के नियम कानूनी तरीके से ठीक नहीं है। हालांकि क्राइस्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों का मानना है कि यह विश्वविद्यालय निजी संस्था है और वो सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
BBC इंडिया बोल।
बार बार नाथूराम गोडसे की तारीफ क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और अब प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त बताया। महात्मा गांधी की हत्या के 70 बरस बाद भी संघ परिवार में गोडसे की विरासत को लेकर असमंजस क्यों? इस बार BBC इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
30 मई से इंग्लैंड में शुरू हो रही क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारत प्रबल दावेदारों में शामिल है। भारत ने पहली बार वर्ष 1983 में फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। उस मैच के रोमांचक क्षणों का सिलसिलेवार ब्यौरा दे रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
जब 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के मैदान के बीचों बीच कपिल देव निखंज और मदन लाल के बीच मंत्रणा हुई तो उसका असर न सिर्फ विश्व कप के फाइनल पर पड़ा बल्कि उसने हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी। विव रिचर्ड्स ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए आनन फानन में 33 के स्कोर पर पहुंच गए। वो मदन लाल की गेंदों पर 3 चौके लगा चुके थे इसलिए कपिल देव किसी और को ओवर देने के बारे में सोच रहे थे। तभी मदन लाल ने उनसे 1 ओवर और करने देने के लिए कहा। कुछ हलकों में ये भी कहा गया कि मदन लाल ने उनसे गेंद छीनी। मदन लाल याद करते हैं।
ये बात सही है कि कपिल देव से मैंने गेंद ली थी, छीनी नहीं थी। कैप्टन के हाथ से गेंद तो कोई छीन नहीं सकता, पर ये था कि मेरे को 3 ओवर में 20 के रन पड़ गए थे तो कोई भी कैप्टन उसके सोचेगा कि किसी और को बॉलिंग कराई जाए। मैंने उसको एक ही बात कहा कि मैंने 3 ओवर किए हैं, 1 ओवर और मैं करूंगी। वो सोच ही रहा था, बाय द टाइम वो सोच रहा था तो मैंने बॉल लिया उनसे। मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूं, तो मैंने हिट किया जरा ग्राउंड को, वो थोड़ा सा गेंद तेज किया, उन्होंने मिस टाइम किया। बाकी देखिए कपिल देव जरूर भागे 20-25 यार्ड पीछे भागे हैं, पर ये कपिल देव जैसे खिलाड़ी जो इतने दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं और उनके लिए ये कैच मुमकिन था, तो यही एक हिस्ट्री है।
June 1983 को शनिवार था, लॉर्ड्स के मैदान पर बादल छाए हुए थे। जैसे ही क्लाइव लॉयड और कपिल देव मैदान पर टॉस करने आए, सूरज ने बादल को पीछे ढकेला और दर्शकों ने खुशी से तालियां बजाई। उस दिन कपिल टॉस हारे और लॉयड ने भारत से पहले बैटिंग करने के लिए कहा। एंडी रॉबर्ट्स ने बिग बर्ड जॉयल गार्नर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की। रॉबर्ट्स ने भारत को पहला झटका दिया जब 2 के स्कोर पर दूजो ने गावस्कर को कैच कर लिया।
एंडी रॉबर्ट्स, well done, that's beautifully bowled. Gavaskar has gone the first wicket down and Andy Roberts in the middle of this great spell of bowling from himself and Joel Garner has taken the first Indian wicket.
गावस्कर की जगह आए मोहिंदर अमरनाथ ने एक छोर संभाल लिया। दूसरे छोर पर श्रीकांत तूफानी मोड में थे। उन्होंने पहले गार्नर को 4 रनों के लिए स्लैश किया, फिर उन्होंने रॉबर्ट्स की गेंद को मिड विकेट पर बाउंड्री के बाहर किया और थोड़ी देर बाद उन्हें 6 रनों के लिए हुक कर दिया। मैंने श्रीकांत से पूछा कि जब आप बैटिंग करने गए थे तो क्या सोच कर गए थे।
जाके उधर मारना चाहिए, एसी है मेरा, जाके देख के खेल लो, तुम्हारा गेम खेल लो, यही मेरा एटीट्यूड है, जाके मारेगा तो मारो, नहीं मारो तो जल्दी आंसर आओ।
श्रीकांत बैटिंग करते हुए काफी रिस्क ले रहे थे और उधर लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी पर बैठे हुए भारतीय खिलाड़ियों का दिल मुंह की तरफ आ रहा था। लॉयड ने मार्शल को लगाया और आते ही उन्होंने श्रीकांत को पवेलियन भेजा, लेकिन उनके बनाए गए 38 रन दोनों टीमों का सर्वाधिक स्कोर था। मोहिंदर और यशपाल शर्मा ने बहुत धीमे धीमे 31 रन जोड़े, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज एक कंप्यूटराइज रॉकेट की तरह बार बार आक्रमण करते रहे। रॉबर्ट्स जाते तो मार्शल आ जाते, मार्शल जाते तो होल्डिंग गेंदबाजी संभाल लेते। यशपाल और मोहिंदर दोनों जल्दी जल्दी आउट हुए। भारत के 6 विकेट मात्र 111 रनों पर गिर गए। लॉर्ड्स में मैच देख रहे भारतीय मूल के दर्शकों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। उधर भारत में क्रिकेट प्रेमी झल्लाकर अपना रेडियो और टेलीविजन सेट बंद कर रहे थे, लेकिन भारत के आखिरी 4 विकेटों ने करो या मरो की भावना को चरितार्थ करते हुए 72 रन जोड़े। भारतीय टीम 183 रन बनाकर आउट हुई और वेस्टइंडीज की टीम इस तरह पवेलियन की तरफ भागी मानो विश्व कप उनकी झोली में हो। मैंने सैयद किरमानी से पूछा कि जब आप फील्डिंग करने उतरे तो आप क्या सोच रहे थे कि मैच किस तरफ जाएगा।
हम तो समझे कि भाई ये तो बस ओपनिंग स्टैंड में ही खा जाएंगे, हमें विवियन रिचर्ड्स की तो बारी ही नहीं आएगी, मगर अपना हौसला हारेंगे नहीं, ना पीछे हटेंगे, अपना सारे के सारे विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड खेलेंगे।
वेस्ट इंडीज की ओर से हेन्स और ग्रीनिच बैटिंग करने के लिए उतरे। चौथे ओवर में बलविंदर संधू की एक गेंद पर ग्रीनिच ने ये सोचकर अपना बल्ला ऊपर उठा लिया कि गेंद बाहर जा रही है। गेंद सहसा अंदर आई और ग्रीनिच का ऑफ स्टंप ले उड़ी।
All over the place. Now played a shot. Thought it was going to swing down the hill. It held its course and came up. And Greenwich is gone.
रिचर्ड के आउट होने की कहानी आप सुन ही चुके हैं। अब भारतीय खिलाड़ियों के कदमों में तेजी आ गई थी। लॉयड ने बिनी को ड्राइव किया और शॉट में डाउन पर खड़े कपिल देव के हाथों में करारा शॉट आकर चिपक गया।
रॉजर बिनी द बॉलर।
He's gone. Kapil Dev, the skipper. Extra cover. Lloyd is caught. 66 for 5 and West Indies in total disarray now.
गोम्स और बैकस के आउट होने के बाद दूजो और मार्शल जम गए और उन्होंने 7वें विकेट के लिए 43 रन जोड़े। मोहिंदर ने दूजो को आउट किया। वेस्टइंडीज की अंतिम जोड़ी गार्नर और होल्डिंग स्कोर को 140 तक ले गई, लेकिन तभी मोहिंदर अमरनाथ ने तय किया कि अब बहुत हो चुका।
Lost his nerve in the end, and Michael Holden tried to swing that straight ball to leg. It's another wicket for Amarnath. How delighted he looks. 140 all out, West Indies. And the margin of their victory, 43 runs, as India race into the pavilion with the Prudential Cup players.
Lords ke aitihasik maidan par charon taraf darshak hi darshak the. Maine Kirti Azad se pucha कि वो दृश्य याद कीजिए जब मोहिंदर ने होल्डिंग को आउट किया था।
कि आप मुझे विश्व कप की बात करें, वो दृश्य बिल्कुल मेरे सामने आ गया है। मेरे शरीर में सरन दौड़ रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा अनुभव था जो कि मैं शायद जीवन में कभी भी नहीं पा सकूंगा। एक कोई भी व्यक्ति किसी भी खेल में, किसी भी अपने प्रोफेशन में रहे, कोई भी व्यवसाय करता हो, वो चाहता है कि उसके शिखर पे पहुंचे। और वो दृश्य सामने जब अपने भारतीय प्रवासी तिरंगा झंडा लेकर सामने खड़े हों, तो एक ऐसा अनुभव है जो शायद रेहान मैं आपको बता नहीं सकता, महसूस जरूर कर सकता हूं।
जब ये जश्न मन रहा था तभी मशहूर अभिनेता शशि कपूर वहां पहुंच गए। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं।
जब हम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले तो वहां साउथ हॉल से आए कुछ पंजाबी नाचने लगे। फिर किसी ने आकर मुझसे कहा कि शशि कपूर बाहर खड़े हैं और अंदर आना चाहते हैं। मैं टीम के 2 सदस्यों के साथ उन्हें लेने बाहर गया। उस दिन हमने लॉर्ड्स के सारे कायदे कानून तोड़ डाले। लॉर्ड्स के मुख्य स्वागत कक्ष में कोई भी व्यक्ति बिना कोट टाई पहने नहीं घुस सकता। हमने शशि कपूर के लिए टाई तो ढूंढ ली, लेकिन वो इतने मोटे हो चुके थे कि हम में से किसी का कोट उन्हें फिट नहीं आया। लेकिन शशि कपूर स्मार्ट शख्स थे। उन्होंने स्टार की तरह कोट को अपने कंधे पर डाला और टाई बांधे हुए अंदर घुस आए। फिर उन्होंने हम सबके साथ जश्न मनाया।
मैंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूगरपुर से पूछा कि उस समय भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था।
बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे कि कोई शादी का माहौल हो, लेकिन शादी में एक दूल्हा होता है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में उस दिन 11 दूल्हे थे। मैं ये भी नहीं भूल सकता कि वेस्ट इंडीज की सारी टीम आई, केवल उनके 4 फास्ट बॉलर्स नहीं आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें कैसे खुशी मना सकते हैं जब उन्होंने तो उनका सब काम कर दिया था। और इतने बड़े बल्लेबाज होने के बावजूद भी वेस्ट इंडीज 7 ओवर में 184 रन नहीं बना पाई।
जब भारतीय टीम मुंबई पहुंची तो मूसलाधार बारिश के बीच 50,000 लोगों ने वानखेड़े स्टेडियम में उसका स्वागत किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हैदराबाद हाउस में टीम का स्वागत किया। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं।
इंदिरा गांधी के मिलने से पहले गावस्कर ने श्रीकांत से कहा, देखो तुम्हारी आंख मारने और नाक चढ़ाने की बुरी आदत है, इंदिरा जी के सामने अपने पर काबू रखना और ढंग से पेश आना। श्रीकांत ने कहा ठीक है। जब वो गावस्कर से बात कर रही थी तो श्रीकांत इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंख और नाक कोई हरकत न करे। तभी मैंने देखा कि श्रीकांत की तरह इंदिरा गांधी की भी आंख झपकाने की आदत है। जब वो श्रीकांत से मिलने पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखें झपकाई। तब तक श्रीकांत अपने ऊपर सारा नियंत्रण खो चुके थे। उनकी भी आंख झपकी और उन्होंने भी अपनी नाक चढ़ानी शुरू कर दी। हम सब लोग ये सोचकर परेशान हो गए कि कहीं इंदिरा गांधी ये न समझ लें कि श्रीकांत उनकी नकल कर रहे हैं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने कनाडा से आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली है। अमेरिका के इस कदम के बाद नए उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता के प्रमुख मार्क लोकोक ने चेतावनी दी है कि युद्ध प्रभावित सीरिया के इदलिब प्रांत में स्वास्थ्य सेवाओं को निशाना बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे आज होगा। बीबीसी इंडिया बोल रहेगा, आपके फोन कॉल्स का इंतजार। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।